वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय स्कंद 5 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 26 और अध्याय का नाम है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। और आज का जो 26वां श्लोक है ये प्रोज फॉर्म में है, इसको गाया तो नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हमारे पीछे बोलिए, तस्य न तस्य महानुभावस्य अनुपथम अमृजित काशायको वास्म द्विधा परिहीण भगवत अनुग्रह उपजिगम इशीति इति। तस्य प्रहलाद महाराज का महाअनुभावस्य जो सिद्ध भक्त थे अनुपथम पथ अमृजित काशाया भौतिकता से दूषित पुरुष का क्या वा अथवा अस्मत विधा हमारे तुल्य परिहीन भगवत अनुग्रह श्री भगवान के अनुग्रह बिना उपजिगमिषंति अनुसरण करना चाहता है इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। तात्पर्य कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शिवजी तथा प्रहलाद महाराज जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती आचार्यों तथा विद्वानों के पदचिन्हों पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही कठिन नहीं है, किंतु जो प्रकृति के गुणों के द्वारा भौतिक दृष्टि से कलुषित हो चुके हैं उनके लिए उस मार्ग पर चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलतावश सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यही विशेषता है कि अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता का कृत्रिम दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार सोचता है और अपने को परम पद पर कभी नहीं मानता। तो यहां श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। ओम ज्ञान तिम्रांधसे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्या मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदांतिकम् वंदेयम् श्री गुरु श्री उत्पत कमलम् श्री गुरुन् वैष्णवाक्ष च श्री रूपम् सागर जातम् सहगण रघुनाथपितम् तम सजीवम् सावदेतम् सावदूतम् परिजन सहितम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानविताक्ष नमो विष्णु पादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामने नमस्ते सरस्वती दिग्वि गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नाम आचार्य छठ ठाकुर की जय। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशक्तिकम नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतशे नमः। वांछा कल्पतरु भिक्ष कृपा सिंधु भे वच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तावृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम कक्षा में श्री वृंदावन धाम में हम आप सभी का वैष्णव और वैष्णवी माता इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आने का और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि इस भागवत महापुराण के इस बहुत ही गहन जो विषय है इसके ऊपर कुछ बोलने का प्रयास कर सकें। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक जो है बलि महाराज के द्वारा बोला जा रहा है। बलि महाराज, जैसा कि इस अध्याय का नाम है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन, और जब नीचे के लोकों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी सुतल लोक पर पहुंचे तो सुतल लोक के जो महाराज हैं महाराजा हैं वो हैं बलि महाराज। तो फिर उन्होंने बलि महाराज के बारे में बताया और फिर तीन श्लोक जो हैं बलि महाराज के द्वारा यहां आए हैं, 24वां 25वां और 26वां। तो आज ये आखिरी श्लोक है जो बलि महाराज इस अध्याय में बोलेंगे। तो अब आज का जो श्लोक है उससे पहले दो श्लोक क्या थे मैं एक दफा दोबारा उनको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बलि महाराज का पूरा जो कथन है वो समझ में आएगा। तो 24वें श्लोक में बलि महाराज धिक्कारते हैं किसको, स्वर्ग के राजा इंद्र को। कहते हैं धिक, स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है और अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। तो यहां कह रहे हैं कि एकदम अज्ञानी है ये इंद्र, बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया, उसके बाद भी अज्ञानता में रह रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, बलि महाराज कह रहे हैं बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे, वह एक मन्वंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक शुद्रांश मात्र है। इसके बाद बलि महाराज कहते हैं, बलि महाराज ने कहा मेरे पिता महा प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित को पहचाना। उनके पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हैं, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरत रहने का वर मांगा। और उसके बाद जो आज का श्लोक है, बलि महाराज कह रहे हैं, बलि महाराज ने कहा हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान का अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं इन तीन श्लोकों में बलि महाराज एक तो इंद्र को धिक्कार रहे हैं और बृहस्पति को भी धिक्कार रहे हैं, और अपने पितामह प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं दोनों तरफ। तो इंद्र भी भगवान के भक्त माने जा सकते हैं, सकाम कर्मी सही लेकिन भक्त हैं, उनके आश्रय में हैं, तो उनको धिक्कार रहे हैं और प्रहलाद महाराज को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब इस बात को समझना चाहिए, बलि महाराज का जो दृष्टिकोण है वो क्यों उनको धिक्कार रहे हैं या क्यों उनके ऊपर दया दिखा रहे हैं कि ये इंद्र ने ये क्या किया, इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। और वो छोटी सी एक आपको कथा के रूप में एक बात शुरू करते हैं कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो अपने सर के ऊपर एक गठरी लेकर के जा रहा है। अब गठरी में उसका सब कुछ है जो उसको चाहिए और वो गठरी उसको वजन उठा रखा है और उससे वजन उठाया नहीं जा रहा, और अकेला है, वन में है, जाते जाते चलते चलते वो गठरी गिर जाती है और गठरी गिरने के बाद उस गठरी को वो उठा नहीं पा रहा और उसने देखा कि अब मैं क्या करूं, गठरी के बगैर जा नहीं सकता और कोई है नहीं, तो उसने भगवान को पुकारा कि हे भगवान तुमको मुझ पर दया नहीं आती, तुमको मुझ पर तरस नहीं आता, आप कहाँ हो, आप मेरी मदद करो। और भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, हे वत्स क्या चाहते हो, आप आ गए भगवान, आप आ गए, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप मेरे ऊपर दया करें, ये गठरी मेरे सर पे रखवा दो, ये गठरी मेरे सर पे रखवा दो। भगवान चकित हैं कि मैं साक्षात इसके सामने आया हूं और ये मुझसे क्या कह रहा है कि गठरी मेरे सर पे रखवा दो। तो ऐसा ही है, जैसे इस बात पे हमें हंसी आ रही है तो बलि महाराज को इंद्र की बात पे इसी प्रकार हंसी आ रही है, क्यों कृष्ण के लिए, भगवान के लिए तीन लोग भी एक गठरी से ज्यादा नहीं है, एक गठरी से ज्यादा नहीं है। जैसे उस व्यक्ति की आसक्ति उस गठरी में थी, उसने उस वजन को वापस अपने सर पे रखवा लिया, उसी प्रकार इंद्र ने भगवान वामन देव से कहा कि आप जाओ और जाकर के मेरा पुनः राज्य मांग के ले आओ, और कुछ नहीं मांगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे सर पे भी हमने बहुत सी गठरियां डाल रखी थी और हैं, समझ लीजिए चाहे आप या हम, और कैसे ना कैसे करके वो गठरी हमारे सर से गिर गई और हमारे पे हम इसलिए भाग्यवान बन गए कि हमने ठाकुर जी से वो गठरी पुनः वापस सर पे रखने से प्रार्थना नहीं की और ठाकुर जी ने हमें वृंदावन भेज दिया। अगर हमने भी ठाकुर जी से ये प्रार्थना की होती कि ये जो गठरी गिर गई है वो हमारे सर पे रख दो, तो आज हम वृंदावन नहीं आ पाते। तो इसीलिए ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर है कि किस तरीके से हमें जो संसारिक गठरियां हैं, ये भौतिकता की गठरियां जो हमने अपने सर पे लादी हुई हैं और उससे हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि अगर ये गठरी छूट गई, मेरा घर परिवार छूट गया, मेरा संसार छूट गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन जब कृष्ण देखते हैं, जब गोविंद देखते हैं कि अब इसने गठरी गिर जाने के बाद ये गठरी से इसका लगाव ज्यादा नहीं है और गठरी में आसक्त नहीं है, तो कृष्ण फिर व्यवस्था करते हैं कि अब इसको कहाँ भेजा जाए और इसके सर पे कौन सी गठरी ला दी जाए। खाली नहीं रखते कृष्ण हमारे सर को, फिर कौन सी गठरी लाते हैं, फिर प्रभुपाद की बुक्स की गठरी हमारे सर पे ला देते हैं। इसका वजन उठाओ, इसका वजन आपको दुख नहीं देगा। तो अब जो बलि महाराज प्रहलाद महाराज की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और उनको सिद्ध भक्त बता रहे हैं, और प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान बहुत क्रुद्ध थे, कोई भी देवी देवता नरसिंह भगवान के सामने नहीं जा पा रहा था, समस्त देवता उनके क्रोध को देख करके घबरा रहे थे, तब सभी देवताओं ने मिलकर के लक्ष्मी जी को कहा कि आप जाओ अपने पति के क्रोध को शांत करो। तो लक्ष्मी भी बड़ी सहम गई, घबरा गई और नहीं जा पाई। तब देखा कि भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि पुत्र तुम्हारे कारण भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, तुम ही आगे बढ़ो और उनके क्रोध को शांत करो। तब प्रहलाद महाराज आगे बढ़ते हैं और अपनी स्तुतियों के द्वारा भगवान नरसिंह देव को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो वो मैं नरसिंह भगवान कहते हैं, और प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से, क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दृष्टा मया दिवि विभो खिल धिष्णमा दिष्णया पानाम आयु श्रियो विभव इच्छति यंजनोयम ये अस्मत् पितु कुपित हास विरजम्भित भ्रू विस्फु विस्फूर्जितेन लुलिता सतुते निरस्ता। तो यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, सामान्यता लोग दीर्घ आयु ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों को जाना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। क्या देख लिया है? दृष्टा मया, व्यवहारिक रूप से मैंने देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे, क्रोधित होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो उनकी भौहों की गतिविधियों से तुरंत ही सारे देवता विनष्ट हो जाते थे। केवल जब हिरण्यकश्यपु अपनी भौहों को उठा करके और कुपित हंसी हंसते थे देवताओं को देख करके, और देवता जो है उसी वक्त समाप्त हो जाते थे। इतना ज्यादा भयानक और इतना डर था मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भगवान नरसिंह को। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौहों की गतिविधियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे, तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। और इसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, अब मुझे संसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव हो गया है। कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक इस संसार में जो भी भोग कर रहे हैं उनका प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे को सारा अनुभव हो गया है के भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव हो गया है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबों को नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। कहते हैं कि ऐसा भोग जिसको आप कभी भी नष्ट कर दें, ऐसे भोग की मेरे को आवश्यकता नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा भोग। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को संसारिक भोग और ऐश्वर्य नहीं चाहिए, जो कभी भी काल के रूप में आकर के आप उनको नष्ट कर सकते हो, ऐसे भोगों को लेकर के मैं क्या करूं। और प्रहलाद महाराज ने कहा है क्या कि भक्ति जो है उसके करने की, नवदा भक्ति का ये जो हमको बताया है प्रहलाद महाराज ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है इसको जो व्यक्ति करता है, इस नवदा भक्ति को करने से उसको कहा है कि वो सबसे विद्वान है ना। इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चैनव लक्षणा क्रियेत भगवत यथा तन्मे धीतम उत्तमम। उसकी बुद्धि जो है वो सबसे अधिक बुद्धिमान है जो इस नवदा भक्ति को स्वीकार करता है। इंद्र ने नवदा भक्ति को स्वीकार न करके तीनों लोकों को स्वीकार किया, इसीलिए जो है बलि महाराज उसको धिक्कार रहे हैं। और प्रहलाद महाराज यहां कह रहे हैं कि इस नवदा भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। और यहां शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शिवजी तथा प्रहलाद महाराज जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने चार महापुरुषों के नाम बताए हैं और श्रीमद् भागवतम में यमराज यमदूतों को जब उपदेश देते हैं तो 12 महाजनों के नाम बताते हैं कि भक्ति के असली सिद्धांत को जानने वाले ये 12 महाजन हैं। कौन कौन हैं? स्वयंभू, नारदा, शंभू, कुमार, कपिलो, मनो, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, व्यासकिर, वयम। तो इसमें ये 4 आ जाते हैं। स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा जी, स्वयंभू, नारदा और शंभू, और आगे और आगे कुमार, कपिलो, मनु। तो उसके बाद में है प्रहलाद, जनको, भीष्मो, भीष्म पितामह, बलिर मतलब बलि महाराज, और व्यासकीर मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब यमराज। स्वयं को कह रहे हैं वयम हम। तो जो बलि महाराज ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, वास्तव में बलि महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नवदा भक्ति में बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य हैं। आत्मनिवेदन जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आपको पता होगा कि ये जो नवदा भक्ति है इसके एक एक आचार्य हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन है? श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तन के सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के प्रहलाद महाराज, और पाद सेवनम के लक्ष्मी जी, अर्चनम के पृथु महाराज, वंदनम के अक्रूर महाराज, दास्यम के हनुमान जी, साख्यम के अर्जुन, और आत्मनिवेदन के बलि महाराज। तो जो बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे पुरुष जो भौतिक सुखों में लिप्त है और भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हैं, अपने आप को कितना हीन बता रहे हैं। तो ये, और जिन पर श्री भगवान का अनुग्रह का अभाव है, वो भला ईश्वर के सिद्ध प्रहलाद, ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सतपुरुष मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? तो देखने की बात यह है कि आध्यात्मिक जीवन में भक्त जो है अपने गुणों को छुपाता है और अपने दोषों को बताता है। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मुझसे भक्ति नहीं हो पा रही, मेरे को बताओ मैं कैसे करूं, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है। हम आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं कि भक्त अपने गुणों को नहीं दर्शाता, केवल अपने दोषों को दर्शाता है और गुणों को छुपाता है। और संसारिक जीवन में सब लोग अपने गुणों को बताते हैं और दोषों को छुपाते हैं। अंतर है ना, कितना बड़ा भारी अंतर है। संसार में आप जाओगे सब अपने गुणों को दिखाएंगे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि बलि महाराज अपने पिता महा के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलता वश सोच रहे थे कि वैसा ऐसा नहीं कर रहे। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यही विशेषता है, यही विशेषता है कि वो समझता है कि मैं तो भक्ति कर ही नहीं रहा, मेरे जैसा तो अधम कोई इस संसार में है ही नहीं। और प्रभुपाद कहते हैं ये विनयशीलता का कृत्रिम दिखावा नहीं है। वास्तव में जब हम भक्तों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम इससे कैसे भक्ति के जो रहस्य हैं हम इनसे समझें, या इतने उच्च स्तर पर हैं हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर भक्त अपने को दीन और हीन मानता है और सामने वाले भक्त को उच्च मानता है। तो वास्तव में एक वैष्णव इसी प्रकार सोचता है, प्रभुपाद कहते हैं, और अपने को परम पद पर कभी नहीं मानता। तो बलि महाराज भी इसी प्रकार से उच्च स्तर पे हैं, लेकिन अपने आप को मान रहे हैं कि मैं वास्तव में किसी लायक नहीं हूं, मैं तीनों गुणों से दूषित हूं। तो वास्तव में भक्ति करने का रहस्य यही है कि हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें भक्तों के आश्रय में रहना होगा। भक्तों के आश्रय में रह करके या सीधी भक्ति करके हम भगवान को उतनी शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं, ये मे भक्जना पार्था न मे भक्ता चते जना मद भक्तानाम चये भक्तास्ते मे भक्तमा मता। कि जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं, जो मेरी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे सचमुच भक्त हैं, भगवान कहते हैं। और इसी बात को शिवजी ने भी कहा दुर्गा जी से, आराधना नाम सर्वेशणाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परातरम देवेम तदीय नाम समर्चनम। शिवजी दुर्गा जी से कहते हैं कि यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा करने का भी संस्तुति की गई है, लेकिन विष्णु की पूजा करना जो है वो श्रेष्ठ है, लेकिन विष्णु की पूजा से भी जो श्रेष्ठ है वो है विष्णु के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार से जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे को करना क्या है, तब हम जो है वैष्णव का शरण लेते हैं। वैष्णव की शरण लेकर के हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रे विज्ञा न बुझाए, कि वैष्णव को आप उसकी क्रिया और मुद्रा से नहीं पहचान सकते। किसी वैष्णव को हम केवल देख करके नहीं पहचाना जा सकता उसकी क्रिया और मुद्रा से। तो यहां हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रभुपाद ने जो इस श्लोक के तात्पर्य में जो मुख्य रूप से इसी बात पे बल दिया है कि ह्यूमिलिटी, विनयशीलता, विनयशीलता से बलि महाराज सोच रहे थे कि मैं किसी लायक नहीं हूं। और हर भक्त क्या सोचता है, हर भक्त यही सोचता है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी होती है, कृतज्ञता जब किसी के प्रति होती है तब हमारे अंदर क्या होती है, विनयशीलता। विनयशीलता मतलब हम अपने को तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, जो महाप्रभु ने बताया कि अपने आप को कैसा हमारे को समझना चाहिए। तो अगर हम इस विनयशीलता के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं तो देखिए, वैष्णवानाम यथाशंभो, वैष्णव में सबसे उच्च कौन है, शिव जी, शंभु जी। और जब सागर मंथन हो रहा था और देवता और असुर लगे हुए थे सागर मंथन करने में और अमृत को निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या निकला, विष निकला। और विष भगवान ने कहा, श्री हरि वहां थे तो उन्होंने कहा कि आप जाओ शंभु के पास और उनसे प्रार्थना करो, वही आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं, इस हलाहल विष को और कौन ग्रहण कर सकता है। तो वैष्णव जब समय आता है तो उन्होंने बड़ी प्रेम से भगवान की उस आदेश को स्वीकार करते हुए उस विष को, हलाहल विष को ग्रहण कर लिया। वैष्णव समय आने पे पीछे नहीं हटते। और फिर उनको लगा कि ये विष तो मैं पी रहा हूं लेकिन हृदय में तो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, ये विष जाएगा तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने विष को गले तक रोक लिया, विष को मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो इसीलिए उनका नाम क्या हो गया, नीलकंठ हो गया। तो ये ह्यूमिलिटी है, जैसा आदेश मिला वैसा तुरंत स्वीकार किया। जब विभीषण भगवान राम के पास पहुंचे तो उन्होंने भी शरणागत का भाव दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रावण का भाई हूं, आपके पास आया हूं। तो उन्होंने पूर्ण दीनता और हीनता के साथ भगवान के चरणों का आश्रय लेने की प्रार्थना करी। तो इस प्रकार से भगवान राम ने विभीषण को, हालांकि सुग्रीव और अनेक हनुमान थोड़े संकोच कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप शत्रु के भाई को आश्रय दे रहे हैं, तब भगवान ने कहा नहीं, ये मेरे शरणागत हुआ है तो मेरे को निश्चित रूप से इनको जो है आश्रय देना है। जब माधवेंद्रपुरी जा रहे थे चंदन लेने के लिए और बीच में गोपीनाथ मंदिर आया, और गोपीनाथ मंदिर में जब भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर की चोरी करी, खीर चोरा गोपीनाथ बन गए, और रात्रि में जब स्वप्न आया पुजारी को कि मेरा एक भक्त बाहर है माधवेंद्रपुरी, उसको जाकर के ये खीर दो, और जब माधवेंद्रपुरी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने क्या सोचा, ये रातों रात मेरे को यहां से निकल जाना है, सुबह उठते ही तो ये लोग सब मेरे को घेर लेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। इतनी विनम्रता, इतनी विनयशीलता वो नहीं चाहते थे कि मेरा जो है गुणगान हो, और रातों रात वहां से निकल गए। तो ये है विनयशीलता, जिसके कारण से हम लोग जो है ऐसे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। और देखते हैं हम अनेक उदाहरण हैं, थोड़े से उदाहरण हम लेके चलेंगे ताकि हमें सारी कथाओं का भी साथ साथ स्मरण होता चले। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले, हालांकि नवाब हुसैन शाह के मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन जब मिले तो कैसे मिले, मुंह में तिनका रख करके, मुंह में तिनका दबा करके और अपने आप को बिल्कुल शुद्ध मान करके महाप्रभु की शरण में आए कि प्रभु आप हमारा स्पर्श मत कीजिएगा, हम बहुत ही ज्यादा शुद्ध हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं भक्तों के आचरण से उनके अंदर कितनी विनम्रता है, कितनी विनयशीलता है। लोकनाथ गोस्वामी जी का स्मरण कीजिए, लोकनाथ गोस्वामी जी इतने विनम्र थे, इतने विनय थे, विनयशील थे कि उन्होंने अपने जीवन में एक भी शिष्य को स्वीकार नहीं किया, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन जब महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और उनको आदेश दिया कि नहीं, तुम्हें नरोत्तम को जो है शिष्य के रूप में स्वीकार करना है, तब उन्होंने जाकर के बड़ी मुश्किल से नरोत्तम दास को जो है स्वीकार किया शिष्य के रूप में। और फिर नरोत्तम दास को देखो, इतने बड़े राजघराने के पुत्र क्या सेवा कर रहे हैं अपने गुरु की, अपने उनके मल को साफ कर रहे हैं और उस स्थान को साफ कर रहे हैं जहां वो मल पड़ा रहता है, इस तरीके से इतनी विनम्रता। आप देख सकते हो ये भक्तों के गुण हैं। और उसके बाद में एक श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य एक दफा किसी गांव में जाना चाहते थे तो उन्होंने अपने जो सेवक थे, उनके शिष्य भी थे, सेवक थे, उनको कहा कि मैं उस गांव में जाना चाहता हूं तो कृपा करके तुम वहां जाओ, वहां मेरे दो शिष्य रहते हैं, और उनसे जाकर के कहो कि मैं आना चाहता हूं, एक तो काफी धनी है, धनवान है, और एक निर्धन है, लेकिन तुम दोनों के पास जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं दोनों के पास जाऊंगा। तो वो सबसे पहले धनी जो उनका शिष्य था उसके पास गए और कहा कि ऐसे ऐसे गुरुदेव आना चाहते हैं तो आपके यहाँ व्यवस्था बन जाएगी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाएगी, मैं गुरु को इतना सेवा करूंगा, मैं इतना वो करूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रखूंगा। तो इतना कहकर के उन्होंने उसको संतुष्ट किया कि भाई मैं गुरु की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। और फिर वो उस निर्धन शिष्य के पास भी गए, उन्होंने भी वही बात कही कि मैं कोई कमी नहीं रखूंगा जो मुझसे बन पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। गुरु तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आप आए हो तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, उनके लिए पूरा आदर सत्कार जलपान सब कुछ किया। और वो उनसे भी होकर के जब गए रामानुजाचार्य जी के पास, तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि क्या हुआ दोनों जगह। तो धनी व्यक्ति के पास गए और निर्धन के पास गए, तो उन्होंने बताया, बोले आपको सेवा आपकी किसने की। बोले धनी व्यक्ति ने तो सिर्फ आपकी सेवा का मेरे को संकल्प लिया। और बोले आपको, बोले नहीं मेरे से तो उन्होंने कोई नहीं कुछ कहा। बोले आपको कुछ नहीं, आपको सेवा कुछ नहीं की। बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं किया, जल भी नहीं पिलाया। अच्छा, और निर्धन ने, उसने तो मेरे को छोड़ा ही नहीं, उसने तो मेरे को सब तरीके से खिलाया पिलाया, प्रसाद ये वो बहुत अच्छे से संतुष्ट किया। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि हम उन्हीं के पास जाएंगे जो निर्धन है, उसी की सेवा को उन्होंने स्वीकार किया, है ना। तो यहां है कि जो भक्तों के भक्त हैं, अगर हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, अगर हम गुरु के शिष्यों की सेवा नहीं कर सकते, केवल गुरु को ही हम देखते हैं कि गुरु आएंगे गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएंगे बस, लेकिन गुरु के जो आश्रित है उनको भी हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि वह ये है वास्तविक विनम्रता। केवल गुरु को दर्शाने मात्र से या गुरु की सेवा करने मात्र से नहीं, जो गुरु के आश्रित हैं उनकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। और हम देख सकते हैं जब श्रीमद् भागवतम में जब चित्रकेतु को माता पार्वती ने श्राप दिया, माता पार्वती ने श्राप दिया, तब चित्रकेतु ने किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। अब देखिए ये वैष्णव के गुण, कोई भी विरोध नहीं किया, बड़ी ही प्रसन्नता से और सहर्ष उस श्राप को जो है वो स्वीकार कर लिया। माता जो आप कह रहे हो मैं उसको स्वीकार करता हूं, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी बातों का हमें विचार विमर्श मन में करते रहना चाहिए। जब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलने के लिए ललायत थे और महाप्रभु इनकार कर रहे थे, अंततः जब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिले तो कितनी दीनता थी राजा में, कितनी दीनता थी, कितनी विनयशीलता थी। और जब स्वयं महाप्रभु वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती से मिलने गए तो महाप्रभु की विनयशीलता, उनकी दीनता देखिए, कहां बैठ गए थे, बिल्कुल पिछवाड़े में नाली के पास जहां हाथ धोते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन को भी हमें सुनना चाहिए, गोपीनाथ मम निवेदन सुन विषयी दुर्जन सदा कामरत किछो नाही मोर गुण। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरा जीवन क्या है, विषयी और दुर्जन, विषयी और दुर्जन में और सदा काम में आसक्त मेरा जीवन रहा है और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और जब हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं, जब श्रील प्रभुपाद के जीवन को जब हम देखते हैं, जब वो संघर्ष कर रहे थे और मासिक पत्रिका भगवत दर्शन का लेखन और मुद्रण, राइटिंग प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्वयं अकेले कर रहे थे, और दिल्ली की सड़कों पर धूप में, चिलचिलाती धूप में, गर्मी में एक एक व्यक्ति को एक एक पुस्तक लेने के लिए कितना आग्रह कर रहे थे, कृपा करके मेरी इस पुस्तक को ले लो, एक ये भगवत दर्शक पत्रिका इसको आप ले लो और पढ़ के देखो आपका जीवन बदल जाएगा। इतनी विनयशीलता लेकर के प्रभुपाद ने अपने जीवन में ये संघर्ष किया, चाहे देश में चाहे विदेशों में। क्या विदेशों में कम उन्होंने विनयशीलता दिखाई? जिन भक्तों को प्रभुपाद ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था उनके जूठे बर्तन मांजे, जूठे बर्तन मांजे, अपने हाथों से बना करके खिलाया, उनको मां की तरह प्यार दिया, तभी तो वो विदेशी प्रभुपाद के दीवाने हुए। ऐसे दीवाने नहीं हो गए कि प्रभुपाद गए और वो प्रभुपाद के पीछे लग गए, नहीं, उनको वो प्यार दिया, वो ममता दी कि वो अपने माता पिता को भूल गए और प्रभुपाद को अपने माता और पिता मानने लगे। और वही प्रभुपाद ने उस संस्था को वहां जन्म दिया, वो विनयशीलता के कारण। तो भक्तों का ये गुण है विनयशीलता। और हमारी जो संस्था है जिसका मेन बिजनेस है पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी विनयशीलता पर आधारित है। बगैर विनयशीलता के हम पुस्तकों का वितरण नहीं कर सकते। तो ये जो पुस्तक वितरण जो हम करते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि पुस्तक वितरण जो है इस संस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो भी विनयशीलता के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से हम आज के इस श्लोक से ये अभिप्राय निकालते हैं कि जो बलि महाराज स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की, और उनको जो है सर्वोत्कृष्ट बता रहे हैं और सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज पर बता रहे हैं, तो वास्तव में बलि महाराज स्वयं भी शुद्ध भक्त हैं। उनको हमें और किसी रूप में नहीं देखना चाहिए। तो मैं अपने यही वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई और कुछ कहना हो, टीका टिप्पणी करनी हो, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्यथा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी।